हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैतन्य चरितामृत के 9वें दिन के सत्र में। अभी तक हम लोग आदि लीला संपूर्ण चर्चा कर चुके हैं और आपके लिए हमने कविराज गोस्वामी इनके द्वारा रचित जो आदि लीला की अनुकर्मणिका है वो भी हमने दी है। तो एक छोटा सा रिकैप हम लोग आदि लीला का लेंगे, जो हम लोग 8 दिन तक चर्चा करते आ रहे लगातार, केवल अनुकर्मणिका भी पढ़ेंगे तो भी हमारा इसका जो है वो क्रमबद्ध रिकैप जिसे कहते हैं वो हो सकता है। तो सबसे पहले अध्याय में हमने देखा आदि लीला के मंगलाचरण, जिसमें 14 श्लोक कविराज गोस्वामी रचित करते हैं और उसमें से 2 श्लोकों का विस्तार से वर्णन पहले अध्याय में आता है। तो पहला अध्याय है मंगलाचरण, दूसरा अध्याय है चैतन्य तत्व निरूपण, तीसरा अध्याय है चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के बाह्य कारण, चौथा अध्याय महाप्रभु के अवतरण के गुह्य कारण, पांचवा अध्याय नित्यानंद तत्व निरूपण, उसके बाद छठा अध्याय है, आप सोच सकते हैं क्या है छठा अध्याय, अद्वैत तत्व निरूपण, सातवा अध्याय पंचतत्व निरूपण, आठवा अध्याय चैतन्य लीला वर्णन कारण, क्यों कविराज गोस्वामी ने यह ग्रंथ लिखा है, किस प्रकार से उन्हें आज्ञा मिलती है, हरिदास पंडित वो उन्हें विनती करते हैं और मदन गोपाल जी की कृपा उनके ऊपर हो जाती है, इसके लिए वो ग्रंथ का लिखन किए हुए। आठवां अध्याय, नवे अध्याय में भक्ति कल्प वृक्ष, दसवां अध्याय में चैतन्य स्कंद, चैतन्य प्रमुखतना उस वृक्ष का, ग्यारहवें अध्याय में नित्यानंद शाखा, बारहवें अध्याय में अद्वैत शाखा, तेरहवें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का जन्म और 14, 15, 16, 17 चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला, पौगंड लीला, कैशोर लीला और यौवन लीला, बाल्य पौगंड कैशोर यौवन। तो इस प्रकार से 17 अध्याय हमारे आदि लीला के संपूर्ण हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु अभी 24 साल के हो गए हैं और 25वें साल के और आखिर में युवा अवस्था के आखिर में आदि लीला में हमने देखा कल के किस प्रकार से कटवा महाप्रभु चले जाते हैं और वहां पर केशव भारती इनसे संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि हमने कहा कि कविराज गोस्वामी ने जो पूर्ण चैतन्य चरितामृत ग्रंथ लिखा हुआ है उसके प्रमुख 2 विभाग होते हैं, आदि लीला और शेष लीला। पहले 24 साल है महाप्रभु के वो आदि लीला है गृहस्थाश्रम तक, उसके पश्चात जो 24 साल है उसे कहते हैं शेष लीला। तो जो बाद वाले 24 साल है उसमें भी जो प्रथम 6 साल है उसे कहते हैं मध्य लीला, गमनागमन। उसमें महाप्रभु कभी बंगाल गए, कभी जगन्नाथपुरी गए, कभी वृंदावन गए, कभी वाराणसी गए, इस प्रकार से अलग अलग, कभी दक्षिण भारत गए, तो इस प्रकार से अलग अलग जगह महाप्रभु घूमे, वो 6 साल को कहते हैं मध्य लीला और जो आखिरी 18 साल है उसे कहते हैं अंत्य लीला। आखिर के 18 साल वो है अंत्य लीला। महाप्रभु उस समय जगन्नाथपुरी में ही रुके, कहीं पर गए नहीं। तो इस प्रकार से जो है वो मध्य और अंत्य लीला आती है। तो आज हम मध्य लीला से प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो कृपया यह मत सोचिए आपकी हमारी परीक्षा होने वाली है उसमें केवल आदि लीला ही सिलेबस है, तो हम लोग आगे चल के शायद मध्य लीला के ऊपर भी परीक्षा का आयोजन कर सकते हैं ताकि आप इसे अच्छे से सुने, अच्छे से पढ़े। तो मध्य लीला जैसे हमने कहा था हमारे पहले प्रवचन में कि आदि लीला में जैसे 17 अध्याय है उसी प्रकार से मध्य लीला में 25 अध्याय आते हैं और ये जो 25 अध्याय है इन 25 अध्यायों को कविराज गोस्वामी यदि हम लोग देखें तो 6 विभागों में पुनः विभाजित किए गए हैं। तो उसमें सबसे पहला विभाग आता है पहले 2 अध्याय जिनमें कविराज गोस्वामी सारांश बताते हैं, संपूर्ण मध्य लीला और अंत्य लीला सारांश रूप में कविराज गोस्वामी ने मध्य लीला के 2 अध्यायों में वर्णित की है। तो ये 2 अध्याय पहले, ये एक पहला विभाग हुआ। उसके पश्चात दूसरा विभाग आता है मध्य लीला के अध्याय 3 से लेकर के 6 तक। अभी महाप्रभु वास्तविक मध्य लीला की शुरुआत होती है, संन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु पहली बार वृंदावन जाना चाहते हैं लेकिन वो उनका प्रयास नित्यानंद प्रभु असफल कर देते हैं, इसलिए महाप्रभु फिर अद्वैताचार्य के घर पे चले जाते हैं। वहां पे शची माता उनसे विनती करती है कि आप जगन्नाथपुरी चले जाइए और फिर महाप्रभु जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं और जो रास्ते में क्या क्या हुआ उन सारे घटनाओं का वर्णन अध्याय 3 से लेके 6 तक और जगन्नाथपुरी में पहुंचना, यह है विभाग 2। विभाग 3 आता है महाप्रभु अभी दक्षिण भारत यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। अध्याय 7 से लेकर के अध्याय 10 तक महाप्रभु का दक्षिण भारत यात्रा, इसका वर्णन कविराज गोस्वामी करते हैं। उसके पश्चात महाप्रभु दक्षिण भारत घूम के पुनः जब जगन्नाथपुरी आ जाते हैं तो अध्याय 11 से लेकर 15 तक सारी जगन्नाथपुरी की लीलाएं, फिर जगन्नाथ यात्रा का आयोजन, गुंडीचा मंदिर मार्जन, भक्तों के साथ आदान प्रदान, इन सब लीलाओं का वर्णन 11 से 15वें अध्याय में कविराज गोस्वामी करते हैं। यह है चौथा विभाग। उसके बाद पांचवा विभाग, चैतन्य महाप्रभु पुनः वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब रामकेली में आते हैं तो वहीं से महाप्रभु कन्हैया नटशाला से पुनः जगन्नाथपुरी आ जाते हैं। उनका प्रयास असफल रहता है वृंदावन जाने का, वो क्यों असफल रहा उसकी हम लोग उस समय चर्चा करेंगे। और उसके पश्चात फिर महाप्रभु वृंदावन के लिए तीसरा प्रयास करते हैं, तब उनका प्रयास सफल हो जाता है और महाप्रभु की वृंदावन यात्रा, यह है हमारा पांचवा विभाग, विजिट टू वृंदावन, अध्याय 16 से लेके 18 तक। तो 16 से लेके 18 महाप्रभु की वृंदावन यात्रा का विस्तार से वर्णन है, फिर किस प्रकार से झारखंड होके महाप्रभु जाते हैं उसका भी विस्तार से वर्णन आएगा। और छठा और अंतिम अध्याय, अभी महाप्रभु वृंदावन से पुनः जगन्नाथपुरी आना चाहते हैं और वो वाया वाराणसी आते हैं, और वाराणसी में क्या क्या लीलाएं करते हैं, जैसे हमने आदि लीला के 7वें अध्याय में भी देखा था कि इस प्रकार से प्रकाशानंद सरस्वती इसका उद्धार होता है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनको मिलते हैं, उनको उपदेश देते हैं और महाप्रभु पुनः जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं। तो ये है अध्याय 19 से लेके 25 तक। तो इस प्रकार से हमारी संपूर्ण मध्य लीला का जो है वो 6 विभागों में विभाजन रहेगा। तो सर्वप्रथम जैसा हमने कहा कि पहला विभाग, उसकी चर्चा हम प्रारंभ करते हैं अध्याय 1 और 2, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि ये शेष लीला के सारांश रूप में है। तो शेष लीला, जैसे मैंने पहले कहा कि शेष लीला के भी 2 विभाग होते हैं, मध्य लीला पहले 6 साल और अंत लीला 18 साल, ऐसा कुल मिला के 24 साल की महाप्रभु की शेष लीला है। तो जो पहला अध्याय है उसमें जो पहले 6 साल की मध्य लीला है महाप्रभु की, उसका सारांश में वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी। और जो अंत्यलीला है वो अंत्यलीला भी महाप्रभु की 2 विभागों में विभाजित है। अंत्यलीला कुल मिला के 18 साल की है, उसमें पहले 6 साल और बाद वाले 12 साल। तो पहले 6 साल महाप्रभु अलग अलग भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, उनसे मिलते हैं, कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, उस सब का वर्णन है। और जो आखिर के 12 साल है उसमें महाप्रभु केवल गंभीरा में एकांतवास करते हैं और केवल अपने निकटवर्ती पार्षदों के साथ ही केवल मिलते हैं, और वहां पर निकटवर्ती पार्षदों के साथ कुछ लीलाएं करते हैं, और राधारानी के जो विरह भाव है उसमें वो मग्न रहते हैं, वो है आखिर के 12 साल। तो जो मध्य लीला का हमारा पहला अध्याय है उसमें महाप्रभु के पहले 6 साल संन्यास के बाद के, मतलब मध्य लीला, और अंत्य लीला का प्रथम हिस्सा मतलब पहले 6 साल, इन दोनों को सारांश रूप में वर्णन किया गया है। आपको समझ में आ गया होगा, यदि आप चार्ट कर रहे, नोट बना रहे तो आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि पहला अध्याय जिसमें कविराज गोस्वामी मध्य लीला संपूर्ण, यानी पहले 6 साल संन्यास के बाद वाले पूरा भ्रमण उनका, और अंत्य लीला के पहले 6 साल उनका वर्णन, उनका सारांश रूप में वर्णन पहले अध्याय में किया हुआ है। और दूसरे अध्याय में जो महाप्रभु के अंत्य लीला के आखिरी, मतलब जो आखिर वाले 12 साल है, उनका सारांश रूप में वर्णन महाप्रभु ने कविराज गोस्वामी इन्होंने किया हुआ है। तो यदि हम लोग मध्य लीला का पहला अध्याय देखें कि सारांश रूप में वर्णन, तो सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि कविराज गोस्वामी ने यह सारांश में वर्णन क्यों किया है। तो कविराज गोस्वामी इस मध्य लीला के दूसरे अध्याय में बताते हैं उनके सारांश में लिखने का कारण क्या है। आमी वृद्ध जरा तुर लिखिते का पये कर, मने किछु स्मरण ना होय, ना देखी ये नयने, ना सुनी ये श्रवणे, तबु लिखी ए बड विस्मय। क्या कहते हैं महाप्रभु, ये दूसरे अध्याय का 90 श्लोक नंबर है मध्य लीला का। आमी वृद्ध जरातुर, मैं इतना वृद्ध हो गया हूँ और इतना बूढ़ा हो गया हूँ, लिखी ते का पे कर, लिखते लिखते मेरे हाथ कांप रहे हैं, मने किछु स्मरण ना हो, या मेरे मन में कुछ स्मरण भी नहीं हो रहा है, कुछ चीजें याद नहीं रहती है। ना देखी ये न यने ना सुनी ये श्रवणे, मैं आंखों से ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, इतना बूढ़ा हो गया हूँ, और कान से मैं ठीक से श्रवण भी नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा था कि 90 साल की आयु में उन्होंने प्रारंभ की थी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की लिखने की शुरुआत की थी उन्होंने 90 साल के जब थे, और अभी तो उनकी उम्र बढ़ गई है क्योंकि आदि लीला समाप्त हो गई है, तो अंत्य लीला अभी लिख रहे वो मध्य लीला अंत्य लीला। तो वो कहते कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, स्मरण भी नहीं है, हाथ भी कांप रहे हैं, तब वो लिखी ए बड़ा विस्मय, फिर भी मैं लिख पा रहा हूँ, यही ये बहुत बड़ी विस्मय की बात है। शेष लीला और सूत्रगण कैलो किचु विवरण इहा विस्तारित चित्त हो, या शेष लीला ये जो है वो मैंने सूत्र रूप में यहाँ पर तो बता रहा हूं, यहीं पे मैं उसको विस्तार करना चाहता हूं, लेकिन मैं विस्तार कब कर पाऊंगा। था के यदि आयु शेष विस्तार इब लीला शेष, यदि महाप्रभु कृपा हो, या इतना महाप्रभु के कृपा के ऊपर उनका विश्वास था कि यदि मेरा आयुष्य बच जाएगा, थोड़ा शेष रह जाएगा, तब मैं शेष लीला, मतलब अभी शेष दो अर्थ होते हैं, मेरा आयुष्य बच जाएगा या शेष रह जाएगा, तब महाप्रभु की शेष लीला का मैं वर्णन कर पाऊंगा यदि महाप्रभु की कृपा हो जाती है तो। यही इन अंत्य लीला सार सूत्र मध्य विस्तार करी किचु करी लो वर्णन, ये सब मैं विस्तार से वर्णन कर सकता हूं, करना चाहता हूं, लेकिन मैंने सूत्र रूप से यहां पर पहले दो अध्याय में केवल लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? इहा मध्ये मरी अबे वर्णी तेना पारी तबे ए लीला भक्त गण धन, यदि लिखते लिखते मेरी मृत्यु हो जाए और यदि बाकी सारी लीलाओं को मैं विस्तार से नहीं बता पाऊं, तो ये जो मैं अभी तक जो सार रूप में बताया है वही भक्तों के लिए जो है वो धन संपत्ति बना रहेगा, और चैतन्य महाप्रभु की कुछ तो लीला उनको मिल जाएगी, ऐसा जो है वो कविराज गोस्वामी इनका मानस है। इसी प्रकार से हम लोग भी देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के मन में भी यही विचार आया कि यदि मैं ज्यादा समय तक नहीं टिका रहूंगा इस संसार में तो क्या हो जाएगा, इस संसार कृष्ण लीला से वंचित रह जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने दशम स्कंद पूरा करने से पहले ही कृष्ण पुस्तक हमें कथा के रूप में भाषांतरित करके प्रस्तुत कर दिया, और खास करके चैतन्य चरितामृत यह ग्रंथ श्रीमद् भागवत से पहले ही हमें प्रभुपाद जी ने जो है वो दे दिया है। तो इस प्रकार से ये पहले दो अध्याय हमें सारांश रूप में कविराज गोस्वामी इसलिए बताते हैं कि उन्हें वो साशंक थे कि कहीं मेरी मृत्यु बीच में न हो जाए। तो इस प्रकार से यदि हम लोग केवल पहला अध्याय भी देखेंगे तो एक्चुअली क्या करते हैं, कविराज गोस्वामी लिखते 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 जाते हैं, वो सारांश बता रहे हैं, लेकिन बीच में कोई लीला आती है तो उसे विस्तार से बता देते हैं, और बाद में वापस सारांश रूप से कुछ चीजें बताते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और जब विस्तार करेंगे मध्य लीला में तब वो कहते हैं कि इस लीला को मैंने विस्तार से सारांश करते करते ही बता दिया है, अभी मैं नहीं बताऊंगा। तो इसलिए हम लोग उन अध्यायों को जो है वो अभी नहीं लेंगे, क्योंकि फिर आपके मन में कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये लीला हुई कहां पर है, क्योंकि जब हमने देखा यदि आदि लीला क्या है कि महाप्रभु का संन्यास भी अभी तक नहीं हुआ है, 24 साल आखिर में संन्यास हो जाता है 17वें अध्याय में, लेकिन आदि लीला का यदि आप 7वां अध्याय खोल के देखेंगे पंचतत्व निरूपण में, उसमें प्रकाशानंद सरस्वती का ट्रांसफॉर्मेशन कविराज गोस्वामी लिख दिए है। तो वो लीला कब आती है, वास्तव में मध्य लीला में जब वृंदावन से वापस आ रहे थे महाप्रभु उनके मध्य लीला के आखिर में, तब जाके वो लीला हुई थी। उस समय कविराज गोस्वामी कहेंगे कि मैंने आदि लीला के 7वें अध्याय में उसका वर्णन किया हुआ है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए क्रम कैसे चल रहा है। इसलिए जो हम श्रवण कर रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर खास करके बताते हैं कि जो हमारी अलग अलग भक्तों की दशा होती है, श्रवण दशा, स्मरण दशा, वर्ण दशा, संपत्ति दशा, आपत्ति दशा, ऐसे अलग अलग दशाओं का वर्णन करते हैं, किन किन दशाओं से एक साधक गुजरता है। तो उसमें सबसे पहला जब वो श्रवण दशा बताते हैं तो वह श्रवण दशा में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, और भक्तिनाथ ठाकुर ने भी उसके ऊपर बहुत अपना कार्य किया हुआ है। तो वह कहते हैं कि जब हम श्रवण करते हैं तो उसके दो दशाएं होती है, एक है क्रमहीन श्रवण दशा और दूसरा होता है क्रमबद्ध श्रवण दशा। तो क्रमहीन श्रवण दशा हमें मदद करती है भगवान की लीलाओं का स्मरण करने में, सुनने में, हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है, लेकिन उतनी नहीं होती जितनी क्रमबद्ध श्रवण से होती है। तो हमें अभी यह मौका मिला है कि क्रमबद्ध श्रवण हम लोग कर रहे हैं कि विस्तार से या सारांश में आप जो भी कहे कि किस प्रकार से लीला चल रही है, आगे बढ़ रही है, वो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने पूरी अनुक्रमणिका अभी आपको आदि लीला की सुनाई, ये क्रमबद्ध श्रवण हमारा हो गया है अभी। तो अभी इसी प्रकार से मध्य लीला में हमारा कंफ्यूजन न हो, इसलिए हम लोग क्रमबद्ध श्रवण से ही जाएंगे। वैसे देखा जाए तो हमें भी डर है कि जैसे कविराज गोस्वामी को तो बुढ़ापे का डर था कि हम लोग, हमारे भी देहांत हो सकती है, तो हमें भी यदि कोरोना का डर हो सकता है कि हमें भी पता नहीं कितना करने को मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये पहले दो अध्याय कविराज गोस्वामी सारांश में तो बताए हैं, तो उसका और यदि सारांश में हम लोग देखना चाहें तो पहले अध्याय में कविराज गोस्वामी जो है वो सर्वप्रथम वृंदावन दास ठाकुर इनके चरणों में वंदना करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे विस्तार से वर्णन किए हुए हैं लीलाओं को, लेकिन फिर भी मैं उनकी कृपा से कुछ स्पर्श करना चाहूंगा। तो किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का पहला वृंदावन के लिए प्रयास होता है, लेकिन महाप्रभु वहां तक नहीं जा पाते, वो शांतिपुर चले जाते हैं, फिर वापस जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, वहां पे सार्वभौम भट्टाचार्य को मिलते हैं, उनका उद्धार होता है, फिर वो वृंदावन जाने का दूसरा भी प्रयास करते हैं। ये जो है वो एक प्रकार से गुपित है, क्योंकि जब हम ये ग्रंथ पढ़ते जाएंगे ना तो हमें समझ में नहीं आता कि कब महाप्रभु कहाँ से जा रहे हैं, कौन कौन उनके साथ जा रहा है, वो भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है वास्तविक रूप से देखा जाए तो। तो कई बार हम लोग इस प्रकार से डीप में चले जाते हैं तो हम भ्रमित हो जाते हैं कि क्या चल रहा है। तो इसलिए हम पहले रीडिंग में कहते हैं कि आप केवल श्लोक और अनुवाद पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या है, और उसके बाद तात्पर्यों के ऊपर आप विचार विमर्श करते हुए ठीक से पढ़ सकते हैं उन नोट्स का सहारा लेके जो आपने पहले सारांश में बनाए थे। फिर उसके पश्चात महाप्रभु किस प्रकार से वृंदावन जाना चाहते हैं दूसरे अटेम्प्ट में, फिर वो विद्यानगर चले जाते हैं, फिर नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी वो अपने मानसिक रूप में कुछ मार्ग बना देता है, फिर महाप्रभु राम के लिए चले जाते हैं, फिर वहां पे मुस्लिम राजा शासक है उसका वर्णन है, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पहली बार महाप्रभु को राम के लिए में वहां पर मिलेंगे, और फिर महाप्रभु उनके ऊपर कृपा बरसाते हैं, फिर उसके पश्चात महाप्रभु वृंदावन नहीं जा पाते, वापस पुरी आ जाते हैं शांतिपुर होके। तो ये मध्य लीला के 3 से लेकर 15 तक के अध्याय और अध्याय 16 इनका समरी हो गया। और उसके पश्चात जो है वो महाप्रभु तीसरी बार वृंदावन जाने का प्रयास करते हैं और उनका वृंदावन यात्रा सफल हो जाता है। वृंदावन में क्या क्या उन्होंने किया वो तो विस्तार से हम लोग देखेंगे। फिर रिटर्न जर्नी उनका हो जाता है, उसमें फिर वो वाराणसी से होकर रिटर्न जर्नी हो रहा है महाप्रभु का, उसमें फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इनका उद्धार और प्रकाशानंद सरस्वती इनका उद्धार, ये सब वर्णन आता है। और उसके पश्चात ये तो पूरी मध्य लीला हो गई सारांश में। देखिए हम लोग 4-5 मिनट में पूरी मध्य लीला वर्णन कर लिए, लेकिन पूरे लॉकडाउन पीरियड के अंत तक भी हमारी मध्य लीला ही चलने वाली है। फिर अंत्य लीला का भी कुछ सारांश, जब मैंने कहा अंत्य लीला के पहले 6 अध्याय का सारांश पहले अध्याय में ही वर्णन करते हैं कविराज गोस्वामी, फिर अलग अलग पास टाइम्स होते हैं, फिर जो छोटा हरिदास है उसका उद्धार का वर्णन आता है, रघुनाथ दास गोस्वामी को मिलना, वल्लभ भट्टो को मिलना, रामचंद्रपुरी, गोपीनाथ पट्टनायक का उद्धार, प्रद्युम्न मिश्रा, फिर रूप और सनातन इनको मिलना, हरिदास ठाकुर के साथ वार्तालाप, हरिदास ठाकुर इनका देहगमन, ये सब जो है वो पहले अध्याय में सारांश में कविराज गोस्वामी ने बताया है। और उसके पश्चात जो दूसरा अध्याय है मध्य लीला का, उसमें भी सारांश रूप से जो अंत्य लीला के महाप्रभु के आखिरी 12 साल थे वो महाप्रभु कैसे बिताते हैं, किस प्रकार से विरह भाव महाप्रभु अपने आप में पाते हैं, राधारानी का भाव, राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, ऐसे महाप्रभु जो राधारानी का भाव लेके आए, वो राधारानी का कौन सा भाव था, उसका भी विस्तार से वर्णन जो है वो कुछ श्लोक यहाँ पर कविराज गोस्वामी बताते हैं कि महाप्रभु का विरह में दुख, फिर उनके इंद्रियों की पूर्ति, उनके भगवान श्री कृष्ण को देखने की अभिलाषा, कृष्ण प्रेम का स्वभाव और कृष्ण की अनुभूति भी महाप्रभु करते हैं उस विरह में, इन सारे वर्णन जो है वो कविराज गोस्वामी ये दूसरे अध्याय में सारांश में लिखे हुए हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि मैं कभी मेरी देहांत हो जाएगी, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे पता नहीं है। तो इस प्रकार से जो है वो मध्य लीला का दूसरा अध्याय भी जो है वो समाप्त हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे मध्य लीला का तीसरा अध्याय, हम अभी प्रारंभ करेंगे कि महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है। जैसा कि पहले ही हमने चर्चा की कि आदि लीला के हर एक श्लोक के हर एक अध्याय के प्रारंभ में कविराज गोस्वामी प्रणाम करते हैं उस तत्व को जिनके बारे में वो वर्णन करना चाहते हैं, और खास करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनको वो वर्णन करते हैं। श्री चैतन्य प्रभु वंदे बालोपि यद अनुग्रहात तरन्नाना मतग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम, ऐसे महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो महाप्रभु के अलग अलग कृपा के वर्णनों को जो है वो बताते हैं कि किस प्रकार से मुझे महाप्रभु की कृपा का मैं अभिलाषी हूँ, उसका वर्णन करते हैं। तो अभी मध्य लीला से अंत्य तक कविराज गोस्वामी हर एक अध्याय की शुरुआत ऐसे श्लोक से करेंगे जो श्लोक संपूर्ण अध्याय का सार बताएगा। तो अभी तीसरा अध्याय का प्रारंभ करते हुए कविराज गोस्वामी कहते हैं, न्यासं विधायोत प्रणयोत गौरो वृंदावनम गंतु मना भ्रमाद्यः राढ़े भ्रमच्छान्तिपुरीम अयित्वा ललास भक्तैर इहतम न तोस्मी। पूरी पूरी पूरे अध्याय का सार देखिए, कितना कुशलता से कविराज गोस्वामी जो वो सारे अध्याय का सार हमें केवल एक श्लोक में बता सकते हैं। इसे कहते हैं एलोक्वेंस, कि न्यासम विधाय संन्यास ग्रहण करने के पश्चात न्यासम विधाय उत्प्रणय अथ इस प्रकार से कृष्ण प्रेम का जागरण करते हुए वृंदावनम गंतुम मना, वृंदावन में जाने का उनका विचार हुआ और भ्रमतात यह राढ़े, जाते जाते वो राढ़ देश में भ्रमण करने लगे, कुछ दिन वहां पर भ्रमण किया, उसके पश्चात शांतिपुरीम अयित्वा, उसके पश्चात वो शांतिपुर में चले गए और ललास भक्तये और अपने भक्तों के साथ उन्होंने कुछ आनंद उठाया भगवत प्रेम का, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं नमन करता हूं। तो अभी हम भी क्या करेंगे कि इस प्रकार से लीला के प्रारंभ में ऐसे महाप्रभु को प्रणाम करेंगे, उसके पश्चात लीला देखेंगे और लीला के अंत में पुनः जो पहला वाला श्लोक है उसको यदि हम गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कितना कविराज गोस्वामी इनका कुशलता है कि वो ऐसे ऐसे श्लोकों की रचना करते हैं कि पूरी लीला वो हमें एक श्लोक में भी सुना सकते हैं। तो अभी कविराज गोस्वामी प्रारंभ करते हैं, 26 संवत्सर शेष यही माघ मास तार शुक्ल पक्ष प्रभु करिला सन्यास। 24 वर्ष के अंत में माघ मास के शुक्ल पक्ष में, माघ मास का शुक्ल पक्ष हमें पता है, चैतन्य महाप्रभु उस दिन जो है वो संन्यास आश्रम ग्रहण किए। संन्यास करी प्रेमावेशे चलीला वृंदावन राड़ देशे तीन दिन करिला भ्रमण। संन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु वृंदावन की दिशा में निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने संन्यास लिया है, अभी वो वृंदावन जाना चाहते हैं। लेकिन राड़ देश मतलब प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि राड़ देश ऐसा देश जहां पर गंगा नहीं बहती, तो ऐसा लगता है, श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि राष्ट्र देश की राजधानी बंगाल के किसी भाग में स्थित थी। उस जगह महाप्रभु जो है वो तीन दिन भ्रमण करते हैं और एक श्लोक पढ़ी प्रभु भावेर आवेशे भ्रमिते पवित्र कैला सब राड़ देशे। राड़ देश जहां पर महाप्रभु भ्रमण कर रहे थे वो एक श्लोक हमेशा दोहराते दोहराते वो जा रहे थे, क्योंकि अभी उन्होंने संन्यास लिया हुआ है। ये श्रीमद् भागवत का 11वें अध्याय के 23वें श्लोक का 57 नंबर का श्लोक है, 11.23.57। ये एक सन्यासी धर्म को बताता है। एताम सास्थाय परात्मनिष्ठाम अध्यासिताम पूर्वतमैर महर्षिभिः अहम् तरिष्यामि दुरंतपारं तमो मुकुन्दांग्रिनिषेवयैव। जब परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज नासिक में एक बार आए थे तो उन्होंने सारे ब्रह्मचारियों को ये श्लोक कंठस्थ करवाया था। और ये श्लोक क्या है कि एथम स आस्थाय परात्मनिष्ठा, भगवान कृष्ण के चरण कमलों की सेवा में मैं दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर अज्ञान के इस जो पार करने के लिए मुश्किल सागर है उसको मैं पार कर जाऊंगा। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, और उसकी पुष्टि उन पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा की गई है जो परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दृढ़ भक्ति में जो है वो स्थिर थे। तो इस प्रकार से इस श्लोक को संन्यास लेने के पश्चात महाप्रभु हमेशा गाते गाते नृत्य करते हुए इस राड देश में 3 दिन तक भ्रमण करते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के रास्ते में थे तो प्रेमोन्माद के सारे लक्षण वो प्रकट करते करते वहां से जाते हैं। और उनको यह भान भी नहीं था क्योंकि कृष्ण प्रेम में मदमत है, मैं कौन सी दिशा में जा रहा हूं, अब ये दिन है कि रात है, ये भी उन्हें समझ में नहीं आता था। नित्यानंद आचार्य रत्न मुकुंद तीन जन प्रभु पाछे पाछे तीन करे न गमन। महाप्रभु के संन्यास के समय भी ये लोग वहां पर उपस्थित थे। अभी महाप्रभु वृंदावन के लिए निकल पड़े तो हमें आप ध्यान रखिए, 3 लोग महाप्रभु के पीछे 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 अभी जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं? नित्यानंद प्रभु, चंद्रशेखर आचार्य जिसे जिन्हें आचार्य रत्न कहा जाता है, और तीसरे है मुकुंद दत्त। नित्यानंद प्रभु, आचार्य रत्न और मुकुंद दत्त, ये 3 महाप्रभु के पीछे 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 जा रहे होते। तो जब महाप्रभु आगे आगे जा रहे थे तो जाते जाते कई सारे ग्वालबाल भी महाप्रभु को देखते देखते महाप्रभु के साथ सम्मिलित हो जाते हैं और प्रवास करते करते उनके साथ चले जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, कुछ ग्वालबालों को एकत्रित करते हैं अपने साथ और वो एक कहानी बना के उन्हें सुनाते हैं और उन सबको सूचना देते हैं कि यदि श्री चैतन्य महाप्रभु आपको रास्ता पूछे तो आप गंगा नदी की तट से उनको जाने के लिए कहना, वो वृंदावन का रास्ता आपको जरूर पूछेंगे, तो जब पूछेंगे तो बता देना कि गंगा नदी के किनारे का रास्ता उन्हें दिखा देना। तो जैसे ही महाप्रभु, फिर ऐसा ही होता है कि उन बच्चों को वृंदावन का रास्ता पूछते हैं और वो बच्चे गंगा नदी के तट पर से जो है वो रास्ता दिखा देते हैं और महाप्रभु वहां से चल पड़ते हैं। जैसे ही महाप्रभु गंगा के किनारे से चल पड़ते हैं, नित्यानंद प्रभु जो है वो जो आचार्य रत्न मतलब चंद्रशेखर आचार्य, उनको कहते हैं कि आप अद्वैताचार्य के घर पे पहले जाके पहुंच जाइए और पहुंच के क्या कीजिए कि आप चले जाए, मैं महाप्रभु को शांतिपुर में गंगा के तट पर घाट पर लेके आऊंगा और आप अद्वैताचार्य को लेके आप वहां पर आ जाइए और महाप्रभु के स्वागत की तैयारी कीजिए। और नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि उसके बाद में अद्वैताचार्य के घर पर मैं जब मैं महाप्रभु को लेके जाऊंगा, आप नवद्वीप चले जाना और शची माँ को लेके आना। तो इस प्रकार से आचार्य रत्न को नित्यानंद प्रभु सेवा देते हैं, पहले जाके अद्वैताचार्य को अगवा करे, महाप्रभु के स्वागत की तैयारी करे, और जैसे ही मैं महाप्रभु को लेके पहुंच जाऊंगा आप वापस नवद्वीप चले जाइए और शची माता को लेके आना है आपको। तारे पाठैया नित्यानंद महाशय महाप्रभु आगे आसी दिला परिचय। आचार्य रत्न को अद्वैताचार्य के घर भेजकर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के सामने आए और सूचना दी अपने आने की। और जैसे महाप्रभु जा रहे थे, महाप्रभु गंगा 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 नदी महाप्रभु भावावेश में नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु पूछते, आप कहां जा रहे? नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि मैं भी वृंदावन जा रहा हूं। और फिर चैतन्य महाप्रभु पूछते, हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं? नित्यानंद प्रभु कहते हैं हाँ सही दिशा में जा रहे हैं, ये देखो यमुना। तो जैसे ही महाप्रभु यमुना का नाम सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं और यमुना का गुणगान चालू कर देते हैं। चिदानंद भानो सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री दव द्रव ब्रह्म गात्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रिया नो वपुर मित्र पुत्री। कि मैं ऐसी यमुना नदी चिदानंद भानो, जो जो चिदानंद मूर्ति है सदानंद सुनो, और जो सदानंद महाराज के पुत्र का प्रेम प्रदान करने वाली है, पर प्रेम पात्री जो द्रव ब्रह्म गात्री, जो द्रव ब्रह्म के रूप में बह रही है, अघानाम लवित्री, जो भी इनका स्मरण करता है तो सारे पापों को यह नाश करने वाली है, जगत क्षेम धात्री, जय जगन जगत का कल्याण करने वाली है, पवित्री क्रियान्नो, यह हमें पवित्र करे, और वपुर मित्र पुत्री है, सूर्यदेव की पुत्री है, ये हमारे शरीर को पवित्र करे। इस प्रकार से जो है वो इस श्लोक का उच्चारण करते करते, मंत्र का उच्चारण करते करते महाप्रभु नमस्कार करते हैं, गंगा नदी में स्नान कर सकते, गंगा नदी में स्नान करते हैं, और उसी समय देखते हैं कि अद्वैताचार्य वहाँ पर महाप्रभु के लिए कुछ अंतर्वस्त्र और बहिर्वस्त्र लेके आते हैं, और जैसे ही अद्वैताचार्य को महाप्रभु देखते हैं तो महाप्रभु थोड़ा संदेह महाप्रभु को होने लगता है। महाप्रभु अद्वैताचार्य को पूछते हैं कि अरे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो वृंदावन है। आज अद्वैताचार्य स्थिति स्पष्ट कर देते हैं और वो भी और भ्रमित करते हैं, महाप्रभु जहां पर आप हैं वही वृंदावन है। तो इस प्रकार से ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि आप गंगा नदी पर लौट आए हैं। तब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये सब नित्यानंद प्रभु का ही जो है वो आइडिया होगा, वो भ्रमित करके मुझे यहाँ पर जो है वो यमुना कह के लेके आ गए हैं। फिर अद्वैताचार्य कहते कि अभी आप आ ही गए हैं तो चलिए हमारे घर, आप 3 दिन से भ्रमण कर रहे हैं, आपने उपवास किया रहेगा, कुछ खाया नहीं होगा, आप हमारे साथ घर चले। एक मुष्टि अन्नमुई करिया चौपाक शाखा रुख व्यंजन कैलु सूप आर शाख। कि अद्वैताचार्य कहते हैं मैंने घर में थोड़ा सा, कुछ ज्यादा नहीं, मुट्ठी भर चावल थोड़ा सा पका के रखा है, तरकारियां भी अत्यंत सादी है, कोई विलासप्रिय व्यंजन भी नहीं है, और थोड़ा सा सूख और थोड़ी शाख की सब्जी आपके लिए मैंने बना के रखी है। फिर ऐसा कह के अद्वैताचार्य नाव में बैठा कर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को अपने घर में लेके आते हैं, अपने घर में उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, और पाद प्रक्षालित किया हुआ जल अपने घर के सब परिवार के सदस्यों के ऊपर जो है वो छिड़कते हैं। फिर सर्वप्रथम अद्वैताचार्य की उनकी जी पत्नी थी वो सारे पकवान बनाती है। हमें पता है अद्वैताचार्य की पत्नी जिनका नाम था सीता ठकुरानी, जो महाप्रभु का जब जन्म हुआ था उस समय आदिलीला के 13वें अध्याय में आप देख सकते हैं, आदिलीला के 13वें अध्याय में जब जन्म हुआ था तब वो गई थी कई सारे आभूषण लेके शांतिपुर से, और तब उन्होंने उनका नामकरण किया था, क्या नाम रखा था सीता ठकुरानी ने, आपको याद है, निमाई, वो सीता ठकुरा ने नाम रखा था। तो अभी देखिए वही महाप्रभु इतने बड़े हो गए तो अद्वैताचार्य की पत्नी वो भी थोड़ी बूढ़ी होंगी, तो वो सब खाना बना रही है, तो सारे वस्तु वो भगवान को अभी अर्पण करते हैं, और भगवान को अर्पण करने के पश्चात जो है वो सारे भोजन सामग्री महाप्रभु कहते हैं कि अरे भाई मैं तो सन्यासी हूँ, प्रभु कहे सन्यासी नहीं, सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं कि जो भोग बनाया था वो सारा भोग उसके विस्तार से कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, इतने सारे भोगों के और पदार्थों के आइटम है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा लगता है कि कविराज गोस्वामी स्वयं एक निष्णात आचार्य या कुक रहेंगे, क्योंकि उनको इतने सारे पदार्थों के नाम पता है। और जब इतने सारे पदार्थ देखते हैं महाप्रभु तुरंत प्रणाम करते हैं अद्वैताचार्य की पत्नी, उनके प्रति कृतज्ञता से, ऐछे अन्न ये कृष्ण के कराय भोजन, जन्मे जन्मे शिरे धरो ताहार चरण। इस प्रकार से अन्न जो भगवान कृष्ण को नैवेद्य के रूप में भोग लगा रहा है और भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब कर रहा है, अलग अलग मतलब मेरे कई सारे जन्मों में मैं उनके चरण कमल अपने सिर पे धारण करता हूँ, जो भगवान श्री कृष्ण के लिए ऐसे भोग अर्पण कर रहे हैं। तो ऐसा महाप्रभु जो है वो कहते हैं, और उसके पश्चात कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि फिर सारा भोग लगाया गया, फिर भोग आरती हो गई, और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पे जो है वो भोग आरती अटेंड की। उसके पश्चात अद्वैताचार्य ने भगवान को सुलाया, और सुलाने के पश्चात फिर जो है वो चैतन्य महाप्रभु को बुलाते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए, और फिर चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और प्रसाद ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वो कहते कि इतने सारे पदार्थ तो मैं ग्रहण नहीं कर सकता। प्रभु कहे सन्यासी र भक्ष नहे उपकरण इहा खाइए कैच है इंद्रियवारण। महाप्रभु कहते हैं कि जो जो सन्यासी है, सन्यासी का ये काम नहीं है कि इतना सब जो है वो ऑपुलेंट पदार्थों का ग्रहण करे उसको खाए, फिर मैं इंद्रिय नियमन कैसे कर पाऊंगा मेरे। फिर अद्वैताचार्य और महाप्रभु इनके बीच में मस्ती भरा वार्तालाप होता है। अद्वैताचार्य कहते हैं कि आप कौन से सन्यासी, हमें पता है आप स्वयं भगवान ही है, आप शब्दों के जाल में हमें फंसा रहे हैं। महाप्रभु कहते हैं नहीं, इतना भोजन तो मैं कभी खा ही नहीं सकता, असंभव। फिर अद्वैताचार्य कहते हैं कि आप बिल्कुल नाटक मत कीजिए, जो आपके सामने केले के पत्ते के ऊपर रखा गया है वो सब खा लीजिए। महाप्रभु कहते हैं कि इतना ज्यादा मैं नहीं कर सकता, सन्यासी धर्म है उष्टिष्ठ राखी थे, मैं झूठा भी नहीं रह सकता, मैं इतना कैसे खाऊं। अद्वैताचार्य गए, मुझे पता है जगन्नाथपुरी में आप 56 भोग ग्रहण करते हैं स्वयं भगवान, अभी आपको खाना पड़ेगा। तो फिर महाप्रभु शांत हो जाते हैं और जो जो वहां पर रखा गया था वो सारा ग्रहण करना प्रारंभ कर देते हैं। और खाना प्रारंभ जैसे ही हो जाता है, कविराज गोस्वामी विस्तार से, फिर अभी नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य इनका जो है वो दिव्य झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर वो झगड़े का वर्णन आप विस्तार से कविराज गोस्वामी ने जैसे बताया है वैसा आप जो है वो पढ़ सकते हैं वहां पर। फिर बहुत उनका वो प्रसाद का लीला जो है वो होते रहता है। और इस प्रकार से जब वो हो जाता है वो वहां से उड़ जाते हैं और कई दिन तक जो है वो यही लीला वहां पर चलती रहती है। शांतिपुरे लोकेशनी प्रभुर आगमन देखिता आईला लोक प्रभुरा चरण। इस प्रकार से शांतिपुर में जब लोगों ने सुना कि अभी महाप्रभु आए हुए हैं, सारा शांतिपुर वहां पर पलट गया, सारे लोग वहां पर महाप्रभु के दर्शन के लिए आ जाते हैं। अत्यंत हर्षित होकर भगवान के पवित्र नाम वो हरि हरि का उच्चारण करते हैं और महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान है उनको देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जैसे ही शाम हो जाती है वहां पर अद्वैताचार्य एक सामूहिक कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं, सब लोग नृत्य करते हैं, महाप्रभु भी नृत्य करने लगते हैं और महाप्रभु का नृत्य देखते हुए सारे लोग अचंभित हो उठते हैं। और इस प्रकार से जो है वो विस्तार से उस कीर्तन का भी वर्णन है। उसके पश्चात जो मुकुंद दत्त थे वो महाप्रभु के भाव को समझते हैं और उस हिसाब से वो कुछ श्लोकों की रचना करते हैं जो महाप्रभु के भाव को अनुकूल है। फिर उनको सुन के तो महाप्रभु जो है वो अष्टसात्विक विकार अपने प्रस्तुत करने लगते हैं और नृत्य होता है। सारा शांतिपुर ग्राम, अद्वैताचार्य का परिवार, महाप्रभु के साथ आए हुए पार्षद, वो सब उस कीर्तन में जो है वो मग्न रहते हैं। ऐ मत दश दिन भोजन कीर्तन एक रूपे करी करे प्रभुर सेवन। इस प्रकार से जो है वो ये कार्यक्रम 10 दिन तक चलता रहा। 10 दिन तक लगातार जो है वो शाम के समय में भोजन और कीर्तन चलता था और दोपहर के समय जो है वो कृष्ण कथा चलती थी। इस प्रकार से 10 दिन हो जाते हैं। और फिर एक दिन प्रातःकाल चंद्रशेखर, जिनको नित्यानंद प्रभु ने भेजा था, सेवा दिया था, वो शची माता को लेके पालकी में बिठा के अनेक भक्तों के साथ जो है वो शांतिपुर लेके आते हैं। और नदिया नगरेर लोक स्त्री बालक वृद्ध सब लोग आईला हईला संघट समृद्ध। नदिया के सारे लोग जिसमें स्त्रियां बालक वृद्ध सब लोग सम्मिलित थे और विशाल भीड़ इस प्रकार से शांतिपुर में एकत्रित हो जाती है सब लोग महाप्रभु को देखने के लिए। और जो ही शची माता वहां पर पहुंची, चैतन्य महाप्रभु उनके चरणों में मानो एक दंडा गिरता है उस प्रकार से गिर पड़े। और शची माता महाप्रभु को अभी संन्यास के पश्चात पहली बार मिल रही है, वो उन्हें गोद में लेके रोना प्रारंभ कर देती है। दोहर दर्शने दुई होइला विवल केश ना देखिया शची होइला विकल। एक दूसरे को देख के दोनों विवल हो उठते हैं और जब केश ना देखी शची होइला विकल, जब महाप्रभु के सुंदर घुंघराले बाल वो नहीं देखती है तो शची माता जो है वो बहुत ही विकल हो जाती है और स्नेहवश चैतन्य महाप्रभु के सारे शरीर के ऊपर से अपना वो हाथ फेरने लगती है। और शची माता रोते हुए महाप्रभु से कहती है, कांदिया कोहे न शची बाछारे निमाई विश्वरूप समना करिह निठुराई। वो महाप्रभु से शची माता रोते हुए कहती है कि तुम्हारा भाई विश्वरूप, उसने भी संन्यास ले लिया था और तूने तो हमें वचन दिया था, लेकिन तू भी इस प्रकार से निष्ठुर मत बन। महाप्रभु उत्तर देते हैं, कांदिया बले न प्रभु सुन मोर आई तुम्हार शरीर यही मोर किछु नाई। चैतन्य महाप्रभु अपने माँ को आई करके पुकारते थे, ये था आई। वृंदावन दास ठाकुर इस प्रकार से जो उनके बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं, तब उसमें वो कहते हैं कि महाप्रभु अपने माँ को आई करके कह के पुकारते थे, और जब भी वो आई, कोई कोई शची माता को इस प्रकार से आई करके पुकारेगा और यदि कोई व्यक्ति आई भी बोलता है तो महाप्रभु तुरंत उस भक्त के ऊपर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इतना शची माता के ऊपर महाप्रभु का जो है वो गाढ़ा प्रेम था, तो हमें जानना चाहिए। तो इसलिए बच्चों ने अपनी माओ को आई इस प्रकार से यदि पुकारे तो महाप्रभु की कृपा उन्हें मिल जाएगी। लेकिन आजकल के बच्चे अपने माँ और पिता को पता नहीं किन किन अलग अलग नामों से पुकारते हैं, तो यदि आई नाम से पुकारे या माई नाम से पुकारे तो वहाँ पर जो है वो महाप्रभु की कृपा भी अप्रत्यक्ष रूप से वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि उनको भी मिल जाएगी। इस प्रकार से महाप्रभु ने उत्तर दिया कि माँ सुना मोरा आई तुम्हारा शरीर यही मोर की चुनाई, ये पूरा शरीर जो है वो आपका है, मेरा कुछ नहीं है उसमें। तुम्हारा पालित देह जन्म तो महते कोटि जन्म तुम्हारा ऋण नापारे शोधिते। यदि यह शरीर जो है वो आपके द्वारा पाला पोसा गया है, बड़ा किया गया है, यदि करोड़ों जन्मों भी मुझे मिले तो भी मैं जो आपका ऋण है उस ऋण को मैं चुकता नहीं कर पाऊंगा। जाने अनजाने में पता नहीं मैं कुछ पागल हो गया, मैंने संन्यास ले लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे विमुख कभी नहीं होऊंगा। हे माता, मुझे जहां भी रहने के लिए आप कहेंगी वहीं पर मैं रहूंगा, और आप जो आज्ञा देगी उस आज्ञा का मैं जो हूं वो पालन करूंगा। उसके पश्चात अद्वैताचार्य शची माता को घर के भीतर लेके जाते हैं और महाप्रभु बाकी सारे भक्तों को मिलते हैं। महाप्रभु एक एक करके सारे भक्तों को मिलते हैं, उन्हें दृढ़तापूर्वक आलिंगन देते हैं। लेकिन किन किन भक्तों को मिलते हैं? नवदीप से आए हुए श्रीवास रामाई विद्यानिधि गदाधर गंगादास वक्रेश्वर मुरारी शुक्लांबर बुद्धिमंत खान नंदन श्रीधर विजय वासुदेव दामोदर मुकुंद संजय कतनामलय वयत नवद्वीपवासी सबर मिलीला प्रभु कृपा दृष्टे हासी। इस प्रकार से सारे भक्तों को मिलते हैं। नवद्वीप के अतिरिक्त और कई आसपास के जो भी गांव थे वो सारे गाँव के लोग भी महाप्रभु के दर्शन के लिए आते थे। सब लोगों को महाप्रभु ने दर्शन दिया। और जिस दिन शची माता अद्वैताचार्य के घर पर आई थी, अभी तक 10 दिन हो गए थे महाप्रभु को वहाँ पर रुके हुए, जिस दिन शची माता आई उस दिन से सारे किचन का भार जो है वो आई ने ही उठाया था, शची माता ने उठा था। भोजन वो करती थी, बनाती थी, और सारे भक्त वहाँ पर भोजन करते थे और चैतन्य महाप्रभु का सब लोग दर्शन करते थे। रात्रि के समय महाप्रभु का नृत्य देखते थे, कीर्तन करते थे, और दिन के समय में जो है वो कृष्ण कथा चलती थी। तो ऐसी समय में महाप्रभु ने सारे भक्तों को एकत्रित कहा और महाप्रभु नहीं, शची माता जो अंदर अभी गई थी, सारे भक्तों को शची माता कहती है कि अब मुझे निमाई के दर्शन का अवसर प्राप्त नहीं होगा। जहां तक आप लोगों की बात है, आप तो निमाई अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु से जो है वो बार बार मिल सकते हो, लेकिन दोबारा मेरी मिलने की संभावना नहीं है। मुझे तो घर पर ही रहना होगा और सन्यासी तो कभी घर पर नहीं आएगा। तो अभी देखिए, महाप्रभु का संपूर्ण आदि लीला में जो प्रमुख नाम आएगा वो आएगा निमाई और विश्वंभर, और मध्य और अंत के, क्योंकि सन्यास में उनका ये जो है नाम मिलता है श्री कृष्ण चैतन्य उन्हें, और उसके पश्चात वो श्री कृष्ण चैतन्य ये जो नाम से जाने जाते हैं। तो अभी माँ बोलती है कि मुझे तो मिलना नहीं होगा, तो माँ सबसे कहती है कि एक दान मैं मांगती हूँ, जब तक चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर में है मुझे ही जो है वो प्रसाद बनाने दीजिए। और सभी लोग कहते हैं कि हाँ, हम आपकी इच्छा से सहमत है, कृपया आप ही जो है वो भोजन बनाइए। और फिर इस प्रकार से शची माता का हाथ का भोजन चैतन्य महाप्रभु जितने भी दिन वहाँ पर थे उस समय वहाँ पर ग्रहण करते हैं। और महाप्रभु फिर सारे भक्तों को एकत्रित करके कहते हैं कि आप लोगों के आज्ञा के बिना मैं वृंदावन जाने का प्रयास कर रहा था, किंतु कुछ बाधा उत्पन्न हो गई और मुझे जो है वो वापस लौटना पड़ा। और जो सन्यासी रे धर्म न है सन्यास करिया निज जन्म स्थान रहे कुटुंबला, जो सन्यासी है सन्यासी का धर्म यह नहीं कहलाता कि सन्यास लेने के पश्चात वो अपने कुटुंबियों के साथ जो है वो घर पर रहे, ये सन्यासी का जो है वो धर्म नहीं है। केह ये न एई बलि ना करे निंदन से युक्ति कह याते रहे दुई धर्म। आप इस प्रकार से कुछ प्रबंध करो कि दो काम एक साथ हो जाए। क्या दोन काम एक साथ हो जाए? मुझे घर पे रहने भी न पड़े और सन्यासी जो है वो लांछन भी नहीं लगे, और दूसरा है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा भी रहूं, ऐसा कुछ आप उपाय कीजिए। महाप्रभु के वचन जब अद्वैताचार्य सुनते हैं तो अद्वैताचार्य भी शची माता के पास आते हैं और शची माता को बताते हैं। तो जब उन्होंने शची माता को महाप्रभु के वचन सुनाए तो वो जगन माता शची कहने लगी कि यह मेरे लिए तो परम सुख की बात होगी कि निमाई यहां रहे, लेकिन उसकी यदि कोई निंदा करे कि सन्यास धर्म का वो ठीक से पालन नहीं कर रहा है तो यह अत्यंत दुख की बात होगी। और यह तो अच्छा विचार है, मेरे विचार से यदि निमाई जगन्नाथपुरी में रहे तो वो हम में से किसी को छोड़ेगा भी नहीं और साथ साथ सन्यासी के रूप में अलग भी रह सकता है, तो दोनों उद्देश्य पूरे हो जाएंगे। क्योंकि माता ने कहा कि जगन्नाथपुरी से कई भक्त नवद्वीप आते रहते हैं, नवद्वीप से भी कई भक्त जगन्नाथपुरी जाते रहते हैं, तो भक्तों का आना जाना रहता है, तो महाप्रभु की खबर हमें जो है वो मिलती रहेगी, हमारी खबर महाप्रभु तक जाती रहेगी, तो इस प्रकार से जो है वो अच्छा रहेगा। तो महाप्रभु को जो है वो जगन्नाथपुरी में रहना चाहिए। और देखिए माँ का हृदय, अपनार दुख सुख ताहा नहीं गणी तार यही सुख ताहा निज सुख माणी। माँ कहती है कि मुझे अपने सुख और दुख की बिल्कुल चिंता नहीं है, चिंता तो केवल मुझे उसके सुख की है, मैं तो उसके सुख में ही मेरा सुख मानती हूँ, ऐसा माँ कहती है। तुम्ही सब लोक मोर परम बांधव यही भिक्षा मांगो मोरे देह तुम्ही सब। माँ कहती है कि ये मैं आपसे भिक्षा मांगती हूं कि आप ये महाप्रभु से कहिए। तो सारे भक्त महाप्रभु को अभी शची माता का उपदेश सुनाने के लिए आते हैं। महाप्रभु जैसे सुनते हैं कि शची माता ऐसा चाहती है कि जगन्नाथपुरी में रहूं, तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे प्रिय मित्रों, घनिष्ठ मित्रों, अब मैं आपसे एक भिक्षा मांगता हूं, कृपया मुझे एक भिक्षा दीजिए। अभी महाप्रभु भिक्षा मांग रहे हैं और महाप्रभु न केवल उन लोगों से भिक्षा मांग रहे हैं, महाप्रभु हमसे भी यही भिक्षा मांग रहे हैं। घरे आ कर सदा कृष्ण संकीर्तन कृष्ण नाम कृष्ण कथा कृष्ण आराधन। चैतन्य महाप्रभु उन सब लोगों से प्रार्थना करते हैं कि घरे आ, आप अभी यहां से घर पर लौट जाएंगे तो घर पर जाके आप क्या कीजिए, कृष्ण का संकीर्तन कीजिए, कृष्ण नाम लीजिए, कृष्ण कथा कीजिए और भगवान कृष्ण का आराधना कीजिए। भक्तों को इस प्रकार से उपदेश देने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु अनुमति चाहते हैं कि आप मुझे अनुमति दीजिए, अभी मैं जगन्नाथपुरी के लिए निकलता हूँ। इस तरह महाप्रभु सभी भक्तों का सम्मान करते हुए और मुस्कुराते हुए सबको विदा देते हैं, सभी भक्तों को घर लौटने की विनती देते हैं। और उसी समय हरिदास ठाकुर रोते रोते महाप्रभु के पास आ जाते हैं। नीला चले आबे तुम्हें मोर को न गति, नीला चले आई ते मोर नहीं कश कति। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि आप तो नीलाचल जगन्नाथपुरी चले जाएंगे, मेरी क्या गति होगी, मैं तो नीलाचल में जाने के लिए असमर्थ हूं, अत्यंत नीच व्यक्ति होने के कारण मैं आपका दर्शन नहीं पा सकूंगा, अपने पापमय जीवन को मैं किस प्रकार से धारण कर सकूंगा। महाप्रभु हरिदास ठाकुर से कहते हैं कि कृपया अपनी दीनता को नियंत्रण कीजिए, आपकी दीनता देख के मेरा हृदय जो है वो व्याकुल हो रहा है। प्रभु कहे कर तुम्हें दैन्य समवरण, तुमर दैन्य तमोर व्याकुल होय मन। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को आश्वासित किया कि वो भगवान जगन्नाथ के समक्ष निवेदन करेंगे और निश्चय ही उन्हें जगन्नाथपुरी लेके जाएंगे। और इसके बाद अद्वैत, हमें पता है कि किस प्रकार से बाद में हरिदास ठाकुर जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। इसके बाद अद्वैताचार्य ने महाप्रभु से विनय किया कि आप दो चार दिन और रुक जाइए, आपसे विरह हमें नहीं सहन हो रहा है। फिर चैतन्य महाप्रभु, अद्वैताचार्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु से काफी बड़े हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए तुरंत जगन्नाथपुरी जाने का प्रस्ताव छोड़ देते हैं और तीन चार दिन तक शांतिपुर में ही जो है वो निवास करते हैं। महाप्रभु के निर्णय से फिर अद्वैताचार्य, शची माता और सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और अद्वैताचार्य प्रतिदिन उनके घर में जो है वो महोत्सव किया करते हैं। दीन कृष्ण कथा रस भक्तगण संगे, रात्रि महा महोत्सव संकीर्तन रंगे। दिन के समय में सारे भक्त कृष्ण के कथाओं में चर्चा करते थे और रात के समय, शाम के समय इस प्रकार से जो है वो कृष्ण संकीर्तन का जो है वो महोत्सव चलता था। आचार्य र श्रद्धा भक्ति गृह संपद धने, सकल सफल हैल प्रभुर आराधने। जो अद्वैताचार्य का सारा, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका गृह, उनकी सारी संपत्ति, उनका धन, सब कुछ महाप्रभु की सेवा में लगा था, इसलिए सब कुछ जो है वो सफल हो गया। इसी प्रकार से प्रभुपाद जी में तात्पर्य में लिखते हैं कि हमें भी इस प्रकार से सब कुछ महाप्रभु की सेवा में जो है वो हमें अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार सारे भक्त अद्वैताचार्य के घर के महोत्सव में रहे और कुछ दिन बीत जाते हैं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को लौटने के लिए विनती करते हैं और पुनः एक बार भिक्षा मांगते हैं। घर गिया कर सबे कृष्ण संकीर्तन, पुनरपि आमा संगे होई बे मिलन। आप सब लोग घर पे जाइए अभी और कृष्ण का कीर्तन कीजिए, मैं वापस आप सब लोगों को जरूर जरूर मिलूंगा। तुम लोग भी कभी जगन्नाथपुरी आओगे ना तो मैं आपको वहां पर जो है वो भगवान के दर्शन दिलाऊंगा और कभी कभी मैं भी यहाँ पर शांतिपुर में, बंगाल में गंगा स्नान करने के लिए जरूर आऊंगा। नित्यानंद गोसाई पंडित जगदानंद, दामोदर पंडित आर दत्त मुकुंद, ए चार जन आचार्य दिल प्रभु सने, जननी प्रबोध करी वंदिला चरणे। ये चार लोगों को अद्वैताचार्य ने महाप्रभु के साथ में दिया, कहा कि आप जाएंगे जगन्नाथपुरी, इन चार लोगों को लेके जाइए। तो महाप्रभु के साथ कौन कौन जा रहा है आप सुन लीजिए। नित्यानंद गोसाई पंडित जगदानंद, दामोदर पंडित आर दत्त मुकुंद। नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंदत, ये चार भक्ता भी महाप्रभु के साथ जा रहे हैं। और इन चारों को साथ में लिया महाप्रभु ने, अपनी माता को सांत्वना दिया, उनके चरण कमलों की प्रार्थना की। तारे प्रदक्षिणा करी करिला गमन, ए था आचार्य र घरे उठिल क्रंदन। अपनी माँ को प्रदक्षिणा किया महाप्रभु ने और वहां से अभी चल पड़ते हैं और यहाँ पर जोर से जो है वो आलाप, सब लोग अद्वैताचार्य के घर में रोने लगते हैं। निरपेक्ष प्रभु शीघ्र चलिला, कांदिते कांदिते आचार्य पाश्चात वलिला। निरपेक्ष ना प्रभु शीघ्र चल, महाप्रभु अभी निरपेक्ष होके बिल्कुल हृदय के ऊपर पत्थर मानो रखा हुआ है, निष्ठुर हृदय से वहां पर जा रहे हैं, क्योंकि हम पता महाप्रभु ने संन्यास जीवों के ऊपर उद्धार करने के लिए लिया था। इस प्रकार से अभी महाप्रभु वहां पर चल रहे, सब लोग रो रहे, अद्वैताचार्य इतने बड़े होने के बावजूद भी रोते 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 महाप्रभु के पीछे भाग रहे, उनको पकड़ रहे। जब अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे कुछ दूर तक गए, महाप्रभु ने उनको हाथ जोड़कर याचना की और महाप्रभु कहने लगे, जननी प्रबोधि कर भक्त समाधान, तुमी वेग्र हैले करो ना रही बे प्राण। अरे आप इतने बड़े हो, बुजुर्ग हो, आप सारे भक्तों तथा मेरी माता को सांत्वना दीजिए, जाइए। आप भी इस प्रकार से रोने लगेंगे तो यहाँ पे कौन जीवित बचेगा, तो ये संभव नहीं है। ऐत बलि प्रभु तारे करिया लिंगन, निवृत्ति करिया कैला स्वच्छंद गमन। इस प्रकार से महाप्रभु ने अद्वैताचार्य को आलिंगन किया और कहा कि आप इसके आगे आप मत आइए, और फिर बिल्कुल पीछे नहीं देखते हुए महाप्रभु वहां से आगे जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़ते हैं। गंगा तीरे तीरे प्रभु चारी जन साथे, नीलाद्री चलीला प्रभु छत्र भोग पथे। चार व्यक्तियों को लेके गंगा नदी के तट से महाप्रभु अभी निकल पड़े हैं। अद्वैत गृहे प्रभुर, आप सब लोगों ने अभी काफी समय तक सुना है, सुनने का क्या फायदा है। अद्वैत गृहे प्रभुर विलास सुने ये जन, अचिरे मिले ये तारे कृष्ण प्रेम धन। जो व्यक्ति अद्वैताचार्य के घर पर जो महाप्रभु का निवास हुआ, इस लीला को केवल ध्यान पूर्वक सुना है, अचिरे मिले तारे कृष्ण प्रेम धन, उस व्यक्ति को बहुत जल्द ही कृष्ण प्रेम का धन उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने ये लीला सुनी, हमें भी जो है वो कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त हो जाएगा। और कविराज गोस्वामी अंत करते हैं, श्री रूप रघुनाथ पदयारास चैतन्य चरित अमृत कहे कृष्ण दास। तो किस प्रकार से मैंने आपको कहा कि जो ये जो लीला हुई, इस लीला को यदि एक श्लोक में जो बताया था कविराज गोस्वामी, वो श्लोक में आपको पुनः बताऊंगा, वो समराइज भी कर सकता है पूरी लीला को। न्यासं विधायोत प्रणयोत गौरो वृंदावनम गंतु मना भ्रमादिहा, राडे भ्रमन शांतिपुरीम अयित्वा ललास भक्तैर इहतम नतोस्मि। न्यासं विधायोत, संन्यास लेने के पश्चात उत्प्रणय गहन कृष्ण प्रेम का जागरण करते हुए महाप्रभु वृंदावन जाने का उनका मानस था, लेकिन महाप्रभु राड देश गए, वहां पर कुछ समय भ्रमण किया और शांतिपुरम आयत्वा महाप्रभु शांतिपुर आए और ललास भक्तैर भक्तों के साथ लीला की। ऐसे श्री महाप्रभु को तम नतोस्मि, मैं प्रणाम करता हूं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से महाप्रभु ने संन्यास लिया है। संन्यास लेने के पश्चात कुछ लोगों को लेके वह अपने साथ गए, अद्वैताचार्य के घर पर रुके, उनकी शची माँ को मिले। माँ ने कहा कि आप जगन्नाथपुरी में निवास कीजिए ताकि समाचार मिलता रहेगा। महाप्रभु ने विनती को अपने शिरोधार लिया और महाप्रभु अभी चार लोगों के साथ, कौन कौन, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद पंडित, दामोदर पंडित और मुकुंद, इनको लेके अभी महाप्रभु जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े हैं। अभी रास्ते में क्या क्या होगा उसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल ठीक शाम को 6:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हाँ, कल 5:30 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा।